दिन भर तारीख 29 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। चीन ने खत्म की एक दंपति एक संतान की नीति, अब पैदा हो सकेंगे दो बच्चे भी।
I did fall pregnant for a second time, Jiang Xinping tells me, but I have...
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 8 मंत्रियों को हटाया। बिहार में बीजेपी ने आखिर क्यों सुशील मोदी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं घोषित किया?
ये भी उतना ही सत्य है कि बीजेपी में ही बहुत लोग, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ग्रुप्स में नहीं है। टॉलेस्ट लीडर, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, बट ही इज नॉट अनडिस्प्यूटेड लीडर।
खबरें और भी, लेकिन थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। चीन ने अपनी विवादग्रस्त एक संतान नीति को खत्म करने की घोषणा की है। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में कहा है कि अब सभी दंपतियों को दो बच्चे पैदा करने की इजाजत होगी। करीब 30 साल पहले जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए ये नीति लागू की गई थी, जिसके तहत दंपत्ति सिर्फ एक ही संतान पैदा कर सकते थे। भारत के सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि कश्मीर में मोस्ट वांटेड चरमपंथी कमांडर अबू कासिम की मुठभेड़ में मौत हो गई है। पाकिस्तानी नागरिक और कश्मीर घाटी में लश्करे तैयबा का कमांडर अबू कासिम श्रीनगर के दक्षिण में रात में हुई गोलीबारी के दौरान मारा गया। खबरों के मुताबिक गोलीबारी की जगह सैकड़ों लोगों ने इस घटना का विरोध करते हुए भारतीय सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके। पुलिस को जवाबी कार्रवाई के तहत आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को अफ्रीका के विकास का भागीदार बनकर खुशी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अफ्रीका के बीच भावनात्मक रिश्तों पर जोर देते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत और अफ्रीका उम्मीदों और अवसरों के दो चमकदार बिंदु हैं। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 41 अफ्रीकी देशों के प्रमुख भारत आए हैं। देश में बढ़ती असहिष्णुता और नागरिक अधिकारों के दमन के खिलाफ भारत के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर पीएम भार्गव ने पद्मभूषण सम्मान वापस करने की घोषणा की है। पीएम भार्गव को 1986 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। सऊदी अरब के एक ब्लॉगर रैफ बादावी को सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से नवाजा गया है। यूरोपीय संसद हर साल इस पुरस्कार की घोषणा करती है। रैफ अपने देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए अभियान चला रहे हैं। पिछले साल उन्हें इस्लाम के सिद्धांतों का अपमान करने के आरोप में 10 साल कैद और कोड़े लगाने की सजा सुनाई गई थी। स्ट्रासबर्ग में पुरस्कार की घोषणा करते हुए यूरोपीय संसद के अध्यक्ष मार्टिन शुल्स ने सऊदी अरब से मांग की कि रैफ को तत्काल रिहा कर दिया जाए। मुझे लगता है कि श्री बदावी एक बहुत ही अच्छे शख्स हैं, जिन पर सऊदी अरब में मौजूद सबसे भयानक सजा दी गई है। मैं सऊदी अरब के शाह से अपील करता हूं कि वो श्री बदावी को तुरंत रिहा करें, ताकि वे ये पुरस्कार स्वीकार कर सकें। ये थे मार्टिन शुल्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी सीरिया में शांति पर बातचीत करने के लिए वियना पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री जॉन कैरी ने सीरिया में युद्ध खत्म करने की कोशिशों को नर्क से बाहर निकलने का रास्ता खोजने जितना मुश्किल बताया। इस बातचीत में जॉन कैरी के साथ रूस, सऊदी अरब और ईरान के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की जन कल्याण संस्था मेडिसिन सान फ्रंटिये ने कहा है कि उत्तरी सीरिया के अस्पतालों पर हवाई हमलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। 1989 में चीन में लागू की गई एक दंपति एक संतान की नीति को खत्म करने का फैसला किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जारी एक बयान के हवाले से कहा गया है कि यदि कोई दंपति चाहे तो अब दो बच्चे भी पैदा कर सकता है। जब यह नीति लागू की गई थी तो उसका मकसद तेजी से बढ़ रही आबादी को नियंत्रित करना था। जोनाथन सडवर्ल्ड की रिपोर्ट सुनिए रोहित जोशी से।
खाने की टेबल के पास बैठा ये परिवार चीन के जनसंख्या संकट का एक मुफीद उदाहरण है। इस परिवार की बूढ़ी परदादी से लेकर अब तक की 5 पीढ़ियों की सिर्फ एक ही संतान रही है, और अभी भी इस परिवार के पास बस इकलौता पोता है। ये दुख भरी कहानी चीन के करोड़ों डिनर टेबल्स की कहानी है। चैन सिंगपिंग मुझे बताती हैं, मैं दोबारा से गर्भवती हुई थी लेकिन मुझे गर्भपात कराना पड़ा। मैं उस बच्चे को नहीं रख सकती थी, या तो आपको खुद से गर्भपात कराना पड़ता या सरकार आपसे करवा लेती। एक दौर में पूर्वी चीन का रूडांग इलाका वन चाइल्ड पॉलिसी को कड़ाई से लागू करवाने के लिए मॉडल माना जाता था, लेकिन अब आलम यह है कि औसत उम्र के लिहाज से ये बूढ़े लोगों का इलाका है। काउडे ट्रन यहाँ मौजूद उन कई बूढ़े लोगों में से एक हैं जो अपने अकेलेपन से जूझ रहे हैं। उनका इकलौता बेटा यहाँ से काफी दूर रहता है। अगर उनकी पत्नी का जबरदस्ती गर्भपात न करा दिया गया होता तो उनके दो और बच्चे होते। काउडे ट्रन कहते हैं कि मेरी एक ही चिंता है कि तब मेरा क्या होगा जब मैं अपनी देखभाल के काबिल नहीं रह जाऊंगा। जब से वन चाइल्ड पॉलिसी को यहाँ अपनाया गया, किसी भी और इलाके की तुलना में अधिक तेजी से रूडांग इलाके से बच्चे गायब होते गए, और यहीं से वन चाइल्ड पॉलिसी के गहरे और चिंताजनक आर्थिक परिणामों की चेतावनी भी पता चली और चीन के नेताओं को इस ओर ध्यान देना पड़ा। चीन की बढ़ती जनसंख्या के संकट को चेयरमैन माओ के समय से ही पढ़ा जा रहा था और उनकी मौत के बाद इस पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई। चीन के नए हालातों के आधार पर अब वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म किया जा रहा है, लेकिन इसके आलोचकों का कहना है कि अब लागू की जा रही टू चाइल्ड पॉलिसी चीन की जनसंख्या को चिंताजनक स्तर तक बढ़ा देगी। आलोचक ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई महिला दो से भी अधिक बच्चे पैदा करना चाहे तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी।
जॉन सडवर्थ, बीबीसी न्यूज, रूडोंग।
रूडोंग से ये रिपोर्ट आपको सुना रहे थे रोहित जोशी। कार्यक्रम में सीधे चलते हैं चीन, जहां से वरिष्ठ पत्रकार साइबल दास गुप्ता मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। साइबल साहब, जैसा कि अभी हमने सुना कि रूडोंग एक ऐसा इलाका था जहां पर बहुत ही फ़ायदा इसका दिखा और सबसे सक्सेसफुल जगहों में से गिना गया, और दुनिया में जब ये नीति लागू हुई थी तो इसने क्रांतिकारी कहा गया था। आज ऐसा क्यों हो गया कि इसको बदलना पड़ा?
आज ये हुआ कि 2011 से चीन सरकार धीरे धीरे से रिलैक्स कर रही है, कम करती जा रही है। पहले ये कहा था कि अगर दोनों पेरेंट्स के कोई बच्चे ना हो, मतलब वो सिंगल बच्चे हो अपने माँ बाप के, तो वो दूसरा बच्चा कर सकते हैं। फिर ये कहा कि दोनों पेरेंट्स में से एक भी अगर सिंगल चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स के, अपने माँ बाप के, तो सेकेंड चाइल्ड कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं। पहले ये कहा था कि सिर्फ शंघाई में हो सकता है, फिर और शहरों में, पूरा देश में होने लगा। 2013 नवंबर में उन्होंने बहुत काफी हद तक रिलैक्स किया और लोगों को कहा कि अब आप अप्लाई करिए सेकंड चाइल्ड के लिए, और तब सरकारी सूत्रों ने ये कहा कि हम 2 मिलियन, मतलब 20 लाख नए पैदा बच्चे हम उम्मीद करते हैं आने वाले एक साल के अंदर। लेकिन 1.5 साल से ज्यादा हो गया और सिर्फ 1 मिलियन पेरेंट्स ने अप्लाई किया। अगर 1 मिलियन पेरेंट्स अप्लाई करते हैं तो 0.5 मिलियन है, उससे भी कम बच्चे पैदा होंगे, तो 2 मिलियन कैसे करेंगे? इसकी चिंता सरकार को होने लगी, डर होने लगा कि यूरोप के कई देश, जापान और कई एक ऐसे देश जिसमें एजिंग पॉपुलेशन है, जहां बूढ़े लोगों को संभालना, उनकी देखभाल ये करना ज्यादा महंगा है, और जहां आर्थिक विकास रुक सकता है, इस डर से अब उन्होंने पूरी तरह से सब लोगों को छूट दे दिया है कि आप सेकेंड चाइल्ड कर सकते हैं।
जी साइबल दास, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मतलब अब इसका उद्देश्य श्रम शक्ति को बढ़ाना है?
श्रम शक्ति को बढ़ाना है, और भारत की तरफ अगर आप देखते हैं, क्योंकि चीन के लिए बहुत बड़ा आर्थिक चैलेंज है भारत के लिए, उसको जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा है भारत के पास, जो बच्चे, जवान देश है, दुनिया का सबसे जवान देशों में माना जाता है, तो वो एक बहुत बड़ी चैलेंज आ रही है। क्योंकि फ्यूचर में ये देखा जाएगा कि वो देश जिसके सबसे ज्यादा जवान हैं और बच्चे हैं, उनकी आर्थिक हालत अच्छी होने की संभावना मानी जाती है।
अगर भारत से तुलना करें तो भारत में बहुत बड़ी समस्या तो यही है कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, और यही हाल चीन का भी है, तो इससे अगर हम तुलना करके देखें,
आबादी की सबसे बड़ी समस्या जिसके लिए स्टार्वेशन होता था, लोग भुखमरी में मरते थे चीन में, उसको चीन ने सक्सेसफुली रोका। एक तरफ 400 मिलियन मतलब की 40 करोड़ नए बच्चे पैदा होने से रोक दिए। 40 करोड़ अगर रोके हैं तो कुल मिला के मान लीजिए 80 करोड़ 30 साल के अंदर रुके होंगे। तो इतनी बड़ी जनसंख्या चीन ने रोक दिया है वन चाइल्ड पॉलिसी करके। लेकिन हुआ यह कि अब शॉर्टेज होने लगा है, क्योंकि उनकी आर्थिक विकास भी इतनी ज्यादा हो गई है कि जब उनको वर्कफोर्स और इंटेलिजेंट वर्कफोर्स और जवान वर्कफोर्स की जरूरत है, उनको अब बूढ़े वर्कफोर्स से काम नहीं चलेगा क्योंकि नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है।
तो इसीलिए एक संतान की नीति को उन्होंने बदल दिया और अब वो दो बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिबल दास गुप्ता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
चीन के बाद रुख भारत का करते हैं और भारत में भी बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने अपने मंत्रिमंडल के 8 मंत्रियों को हटा दिया है। इनमें 5 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री हैं। हटाए गए मंत्रियों में तकनीकी शिक्षा मंत्री शिवकांत ओझा, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री आलोक शाक्य, लघु उद्योग मंत्री भगवत शरण, पिछड़ा कल्याण मंत्री अंबिका चौधरी, स्टाम्प मंत्री अरी दमन सिंह और खादी ग्रामोद्योग मंत्री नारद राय शामिल हैं। मैंने बात की लखनऊ में अपने सहयोगी अतुल चंद्रा से और पूछा कि इन मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है या फिर हटाया गया है।
ये 8 मंत्री आप कह सकते हैं कि इनको निकाला गया है। बर्खास्त शब्द का इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये काफी सीनियर मंत्री हैं और इसमें कई जैसे अंबिका चौधरी, राजा महेंद्र, अर्दमन सिंह, नारद राय, ये लोग मुलायम सिंह के काफी नजदीक माने जाते हैं। शिवाकांत ओझा भी उनमें से हैं। और इनको क्यों हटाया गया, यही एक कारण लगता है कि ये लोग इनमें से
बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जो सरकार है मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहती है, इसलिए इन्हें इस पद से मुक्ति दी गई।
नहीं, विस्तार तो करना चाहती है लेकिन विस्तार करने के लिए इनको हटाने की जरूरत तो नहीं थी। ये लोग हटाए इसलिए गए हैं क्योंकि ये शायद इनमें से जैसे अंबिका चौधरी है वो मुलायम सिंह के साथ थे, अर्दमन सिंह भी उनके साथ हैं, तो ये कहीं लग रहा है कि जैसे अखिलेश यादव अब अपनी टीम एक बनाना चाह रहे हैं।
लेकिन अगर इस टीम की हम बात करें तो आजम खान बहुत कद्दावर मंत्री रहे हैं, वो भी मुलायम सिंह के साथ थे, उसके अलावा राजा भैया का नाम आता है।
देखिए, राजा भैया और आजम खान की तुलना हम अंबिका चौधरी और राजा महेंद्र अर्दमन सिंह से नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि आजम खान पार्टी के फाउंडर्स में से हैं और राजा भैया का एक अपनी पकड़ जो है कुंडा में, प्रतापगढ़ में, उसकी वजह से वो उनके नजदीक हैं। उनको ये मालूम है कि अगर राजा भैया को हम कुछ परेशान करेंगे तो हो सकता है उनको ठाकुर मान करके भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ कर ले, क्योंकि एक समय में वो राजनाथ सिंह के भी नजदीक थे। तो ये इन दोनों को तो अखिलेश यादव का भी वो कद नहीं है कि वो आजम खान को अपने मंत्रिमंडल से निकालें। इन लोगों को हटाना आसान है क्योंकि अंबिका चौधरी बहुत ही सज्जन आदमी है, बातचीत करने में बहुत सुलझे हुए हैं। इनके साथ एक शिकायत शायद ये हो सकती है जैसे कि ये मुंह खोल करके बात कर देते हैं, मतलब जो उनको कहना मुंह फट ढंग से वो कह सकते हैं। तो इनको हटाया जाना जो है वो सिर्फ अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के सिर्फ इस कमेंट पर शायद ये एक्शन लिया हो कि चापलूस हैं, तब ये चापलूसी तो करते होंगे मुलायम सिंह की, अखिलेश की करते भी नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने उस बात को लेकर के इनको हटा दिया होगा। बाकी इन सब से जैसे राजा भैया के लिए तो सुना जा रहा है कि इनको दूसरा अच्छा मंत्रिमंडल मिलेगा। अहमद हसन की उम्र हो गई है इसलिए उनको हटाया जा रहा है, साथ में शायद स्वास्थ्य मंत्रालय में कुछ अपॉइंटमेंट्स होने हैं तो हो सकता है वो उस दृष्टिकोण से किसी और मंत्री को वहां लेकर के आए।
तो कितने मंत्री अभी बचे हैं?
46 मंत्री बचे हैं, तो रीशफल होगा। विस्तार की अभी संभावना, अभी कोई उसका इंडिकेशन नहीं है कि विस्तार होगा।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल के 8 मंत्रियों को हटाया। विश्लेषण कर रहे थे लखनऊ से हमारे सहयोगी अतुल चंद्रा। चर्चा बिहार की करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और अभी 2 चरण बाकी हैं। दोनों प्रमुख गठबंधन अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। महागठबंधन का दावा है कि बिहार में बीजेपी का खेल खत्म। बीजेपी कहती है कि बिहार में जनता बदलाव के पक्ष में मतदान कर रही है। हमारे सहयोगी, जैसा कि आप जानते हैं, पंकज प्रदर्शी इस समय बिहार में हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार में मंत्री श्याम रजक से मुलाकात की और पूछा कि वो आखिरकार किस आधार पर जीत का दावा करते हैं।
मेरा दावा ये है कि आम जन जो है जिस तरह से महंगाई पे त्रस्त रही, जिस तरह से उल जलूल बयान देने का काम किया, वो बयान इस बात का दर्शाता है कि उन लोगों ने जिस दहशत और जिस कुंठित भावना को दर्शा रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनके अंदर परेशानी है।
लालू जी ने एक रैली में कहा कि मंडल राज पार्ट टू है, क्या बिहार का चुनाव अगड़े और पिछड़े की लड़ाई है?
देखिए मंडल कहीं अगड़े या पिछड़े का प्रतीक नहीं है।
नहीं, उन्होंने ये शब्द भी यूज किया।
मैं बता रहा हूँ, ये अगड़े पिछड़े की लड़ाई नहीं, ये गरीबी अमीरी की लड़ाई है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग रहे उनको न्याय नहीं मिला। अगर न्याय मिला रहता तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि इस देश में जातिवाद की बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं पूछना चाहता हूँ कि 3% जिसकी आबादी रही उनका 97% हिस्सेदारी हो गई।
बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में नीतीश जी को नहीं लालू जी को ज्यादा टारगेट कर रही है, जंगल राज की याद दिला रही है, और ये भी कह रही है कि नीतीश जी अकेले लड़ते तो ठीक था लेकिन वो उन लालू यादव के साथ जाके जुड़ गए जिनके खिलाफ उन्होंने 20 साल राजनीति की।
इसकी चिंता बीजेपी को क्यों है? अगर उनको लग रहा है कि जंगल राज है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जंगल राज की क्या परिभाषा है? कानून व्यवस्था ध्वस्त हो तो कानून व्यवस्था कहाँ ध्वस्त है? भारत सरकार, केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने संसद में क्राइम रिपोर्ट पेश किया, उस क्राइम रिपोर्ट को जरा पढ़ लिया जाए। इस देश का सबसे खराब कानून व्यवस्था दिल्ली और बिहार का है 22वां स्थान, तो जो 22वां स्थान है वो हो गया जंगल राज, और जो पहला तीसरा पांचवा छठा है वो हो गया मंगल राज।
जो आपने कहा कि जंगल राज की बात, इस दौर को नहीं, शायद वो उस दौर को याद कर रहे थे जब लालू यादव पहली बार, जो 15 साल का शासन रहा लालू यादव का, उसके बारे में वो शायद कह रहे हैं।
मैं उसको भी जंगल राज नहीं मानता हूँ,
लेकिन नीतीश जी भी तो उस दौर की आलोचना किए हैं।
कभी
आलोचना तो की है
जंगल राज, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा।
आलोचना तो किए,
आलोचना तो नीतीश कुमार जी और लालू यादव दोनों की मंजिल एक थी कि गरीबों को अधिकार मिले, मंजिल एक थी, रास्ते अलग अलग थे।
जीतन राम मांझी के जाने के बाद क्या पार्टी में महादलित के नेता की जगह खाली हो गई?
नीतियां महत्वपूर्ण होती है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होती है।
मैं पूछ रहा हूँ क्या पार्टी में वो जगह खाली हुई है, कोई ले रहा है? क्योंकि देखिए पार्टी में हर वर्ग के नेता का एक चेहरा तो होता है, ये आप भी मानेंगे।
नहीं, हमारी सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच में अंतर है। हम नीतियों में विश्वास करते हैं, वो व्यक्तियों में विश्वास करते हैं।
आज जीतन राम मांझी को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया?
जीतन राम मांझी को कभी भी हमने दलित महादलित के रूप में नहीं माना। उससे भी नीतीश कुमार से जब पूछा था, जब राजभवन से बाहर निकलने पर पत्रकारों ने, उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि वो दलित महादलित है, इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे पुराने सहयोगी रहे हैं और मुझे लगता है कि मेरा जो संकल्प है, पार्टी का जो मुद्दा है, नीतियां हैं, उस नीतियों को वो और आगे बढ़ाने का काम।
क्या उनसे चुनौती मिल रही है पार्टी को?
असंभव। आम जन, आम गरीब, आम दलित, आम महादलित, कोई उनको नोटिस नहीं ले रहा है। उनका क्या इतिहास रहा है? आज तक वो एक विधानसभा क्षेत्र से लगातार कभी चुनाव नहीं लड़ पाए और वो एक पार्टी में कभी नहीं रहे, उनका इतिहास देख लीजिए।
एक बड़ा सवाल जो आशंका और अटकलें लगाई जा रही है मीडिया में या कई तरह के राजनेता ही बोल रहे हैं कि ये गठबंधन चलेगा नहीं ज्यादा दिन तक, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि इतिहास ये रहा है कि लालू जी और नीतीश जी का साथ लंबे समय तक नहीं चल सकता।
ये दोनों का गठबंधन के बारे में शुरू में भी बात हुई कि गठबंधन होगा ही नहीं, गठबंधन हो गया, ये दोनों मिलकर के बैठेंगे नहीं, बैठ गए, ये दोनों सीट शेयरिंग नहीं होगा, सीट शेयरिंग हो गया, इन दोनों का कैंडिडेचर पर होगा झगड़ा, वो भी हो गया, ये लालू यादव नीतीश को मानेंगे ही नहीं, वो तुरंत हो गया। अब देखिए जो बेचैन भारत है, व्याकुल भारत, जो भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थक लोग, कुछ लोग हैं मीडिया घराना के लोग, मीडिया नहीं, मीडिया घराना के लोग, तो उन लोगों का इस तरह का वक्तव्य दे करके लोगों में कन्फ्यूज पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, इन दोनों ने नीतियों और मुद्दों के साथ समझौता किया है और उसी आधार पर यह गठबंधन बना है। दूर दूर तक इन लोगों का कहीं कोई विरोध या मतभेद नहीं है और निश्चित रूप से ये जो बिहार में सरकार बनेगी, अगली लड़ाई मेरा दिल्ली है।
ये थे बिहार सरकार में मंत्री श्याम रजक और उनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी पंकज प्रियदर्शी। भारतीय राजनीति में आमतौर पर ऐसा कमी होता है कि प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता का नाम विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित न किया जाए। बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके सुशील मोदी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आखिर क्यों, यही जानने की कोशिश की है बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने पटना पहुंचकर।
बिहार की राजनीति में अपने आईपैड पर खबरों को देखने वाले और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन समझने वाले नेता शायद ही होंगे। यहाँ ऐसे नेताओं का भी अभाव है जिनके घरों के बाहर बड़ी गाड़ियों, दर्जनों समर्थक और खुद या पार्टी प्रमुख की तस्वीर वाले बैनर न दिखे। इसी बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी की हर चीज थोड़ी अलग है, लेकिन इसके बावजूद वे भाजपा की ओर से विधानसभा चुनावों में जीत की सूरत में मुख्यमंत्री बनने वाले घोषित उम्मीदवार नहीं है। 7.5 वर्ष उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहने वाले सुशील आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं और बिहार के जेपी आंदोलन से भी। तो वजह क्या है उन्हें आगे न रखने की? बिहार में समाचार एजेंसी पीटीआई के ब्यूरो चीफ संजय सिन्हा।
बीजेपी में सुशील मोदी सबसे बड़े कद्दावर नेता है आज के समय में, इसको कोई नकार नहीं सकता है। मगर ये भी उतना ही सत्य है कि बीजेपी में ही बहुत लोग, उनकी नाराजगी है, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ग्रुप्स में नहीं है, क्योंकि एनडीए में ये 7.5 साल ये लोग जो एनडीए गवर्नमेंट में रहे, बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत लोग, उन लोगों को भी अच्छी पॉपुलरिटी, अच्छी पकड़ हो गई। उन सब में भी ये टॉलेस्ट लीडर, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, बट ही इज नॉट अनडिस्प्यूटेड लीडर।
महाराष्ट्र की एक ईसाई महिला से प्रेम विवाह करने वाले सुशील मोदी की उम्मीदवारी में भाजपा नेतृत्व शायद दो बातों पर सशंकित रहा। हालांकि सुशील मोदी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार न बनाकर भाजपा नेतृत्व ने कथनी और करनी में थोड़ा फर्क सा जरूर दिखाया है, लेकिन भाजपा की मजबूरी भी रही होगी, ऐसा मानना है द टेलीग्राफ अखबार के वरिष्ठ पत्रकार नलिन वर्मा का।
बिहार लाइक अदर हिंदी हार्टलैंड, एक कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। इन लोगों को लगता होगा कि भाई सुशील मोदी ये बनिया वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, इनको अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि मेरे और जो कास्ट ग्रुप हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो एंटागोनाइज्ड हो जाएं। तो पहले प्रोजेक्ट कर देंगे तो कहीं लेने का देने पड़ जाए। दूसरी समस्या इन लोगों के पास पर्सनालिटी की थी, कितना हूँ वो लोग नीतीश कुमार को गाली दे दें, कुछ करें, लेकिन द मोमेंट आप प्रोजेक्ट कीजिएगा किसी को तो उसका कंपेरिजन नीतीश कुमार से शुरू हो जाएगा। अभी तो नरेंद्र मोदी से हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि चुनाव हारे हैं जीते हैं दूसरी बात है, लेकिन जब हिंटरलैंड्स में आप घूमेंगे तो उनके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो नहीं भी वोट दे रहा है बोलते हैं, नहीं नहीं भाई, बिहार का बेस्ट चीफ मिनिस्टर, बाहर के लोग भी आके बोलते हैं ये परफॉर्मर है।
पार्टी के भीतर के कुछ लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि सुशील मोदी के सीवी यानी बायोडाटा में एक छुपी हुई कमी है। 2 वर्ष पहले जब भाजपा के भीतर और बाहर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर 2 धड़े दिख रहे थे तो बिहार के ये मोदी गुजरात के मोदी के पाले में नहीं थे। इधर बिहार में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इस मामले पर अलग अलग राय रखते हैं। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक अरुण कुमार पांडे को सुनिए।
लेकिन पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी मुझे लगता है बीजेपी का कि सुशील मोदी को आगे नहीं करके वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किए बिना चुनाव लड़ रही है पार्टी। लेकिन उससे सुशील मोदी पीछे हो गए हैं या पीछे कर दिए गए हैं ऐसा मुझे नहीं लगता है। स्टिल वो अभी भी जो स्टेट के लीडर्स हैं लॉट में ही स्टैंड फर्स्ट, और जो कुछ भी यहाँ स्ट्रेटजी तय हो रही है उसमें हर कंसल्टेशन में, हर बड़े डिसीजन में सुशील मोदी पार्ट होते हैं।
शायद यही वजह है कि प्रदेश में पूरी चुनाव प्रचार प्रक्रिया की बागडोर संभालने वाले भाजपा प्रमुख अमित शाह ने सुशील मोदी को प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर दे रखा है और सुशील के सरकारी निवास पर एक वॉर रूम भी सक्रिय है। बीबीसी से हुई बातचीत में भाजपा के नेता अरुण जेटली ने भी सुशील मोदी को सीएम उम्मीदवार न बताए जाने पर कोई हैरानी नहीं जताई थी और कहा पार्टी ऐसा करती रही है। बहरहाल बिहार में चुनाव तो अब अपने अंतिम चरणों पर है, लेकिन जीत की स्थिति में छाछ और लस्सी पीकर दिन रात चुनाव प्रचार करने वाले सुशील मोदी को मुख्यमंत्री पद से नजरअंदाज करना भी भाजपा के लिए आसान नहीं रहेगा। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी पटना।
और अब वक्त है आपकी चिट्ठियों का।
श्रोताओं की चिट्ठियों के साथ मैं हूं स्वाति बख्शी और आज आपकी चिट्ठियों के जवाब देंगे खुद रेहान फजल।
नमस्कार, रेहान फजल की ओर से भी।
सबसे पहले मैं ईमेल उठा रही हूँ आज पोस्ट कार्ड की जगह। ये ईमेल लिखा है विनीत कुमार ने दिस्तापुर रिहारिया मोहम्मदी लखीमपुर खीरी से। लिखते हैं कि दुनिया जहान में निखिल रंजन से भारत और अफ्रीका संबंधों पर की गई विशेष रिपोर्ट अच्छी लगी। निखिल रंजन दुनिया जहां बहुत अच्छा पेश करते हैं और इन्होंने अजय शर्मा की भी तारीफ की है।
विनीत हमारे बहुत ही रेगुलर श्रोता हैं और एक बात आप नोट करेंगे स्वाति कि जब भी हर बार पत्र लिखते हैं ये 2 बार भेजते हैं ईमेल अपना और ये सुनिश्चित करवाने की कोशिश करते हैं कि इनका ईमेल पढ़ा जाए। आपको एक ही बार लिखने की ज़रूरत है, 2 बार भेजने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक निखिल रंजन की बात है, वाकई उनका कार्यक्रम काबिले तारीफ होता है और जिस तरीके से वो विदेशी मामलों को उठाते हैं, स्टीरियोटाइप तरीका नहीं होता, एक ख़ास एक वैल्यू एडिशन लेकर आते हैं वो कार्यक्रम में। और आपने तारीफ की है उनके कार्यक्रम की, वो हम उन तक पहुँचा देंगे।
दूसरा ईमेल भी उत्तर प्रदेश से है लेकिन सत्यप्रकाश प्रकाश शुक्ला ने फैजाबाद से लिखा है, कहते हैं कि बीबीसी में कई नायाब हीरे हैं जो अपनी आवाज और बोलने के अंदाज से बीबीसी को जीवंत बनाते हैं, जिससे दूर बैठा व्यक्ति भी रेडियो के करीब खींचा चला जाता है और ऐसा लगता है जैसे ये घटनाएं घट रही हों और हम उस काल में पहुंच जाते हैं। खासकर इन्होंने तारीफ की है फैला उजियारा की, कहते हैं जिस अंदाज में मोहनलाल शर्मा ने प्रस्तुत किया वो दिल को छू गया।
बिल्कुल, मोहनलाल शर्मा इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। हालांकि सुनील खिलनानी ने इसको लिखा है और इसका रेडियो रूपांतरण मोहनलाल ने किया है। आपको ये पसंद आया और आपको थोड़ा सा हिंट देते चलें कि आगे आने वाले कुछ दिनों में हम इसमें शिवाजी के बारे में बात करेंगे, मलिक अंबर के बारे में बात करेंगे, विलियम जोन्स और हो सकता है दारा शिको की भी चर्चा हो इस कार्यक्रम में।
एक और ईमेल है सुभाष चंद्र वर्मा का, जिला सिरसा हरियाणा से। इन्होंने लिखा है कि शुक्रवार की सांध्यकालीन सेवा दिनभर का प्रथम संस्करण मेले किसी ईद के चांद से कम नहीं होता। कारण स्पष्ट है, रेहान भाई की विवेचना। किताबों के पठन पाठन में रेहान सदैव मेरे आदर्श रहे हैं और रहेंगे। साहिर लुधियानवी पर उनकी विवेचना को सुनकर यूं लगा कि साहिर के संदर्भ में अब किसी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं रही।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो हमारा दिन बना दिया तारीफ करके। आपको अच्छी लगी ये विवेचना, बहुत खुशी हुई।
लेकिन रेहान जी, एक जो दिलचस्प बात लिखी है वो इस पोस्ट कार्ड में लिखी है। रामेश्वर ने देवरिया उत्तर प्रदेश से पोस्ट कार्ड लिखा और कहते हैं कि जय प्रकाश नारायण जी के बारे में रेहान फजल की विवेचना मन को छू गई। वैसे फजल जी द्वारा सभी विवेचना तारीफ के काबिल होती हैं, आगे भी उनकी विवेचना की काबिलियत बनी रहेगी यही आशा है।
जय प्रकाश नारायण पे जो विवेचना थी वो आप लोगों के खास अनुरोध पर की गई थी, क्योंकि मुझे याद है कि पिछले साल इन्हीं दिनों अक्टूबर के दिनों में हमने किसी और विषय को उठाया था और कई श्रोताओं ने शिकायत की थी कि आपने जयप्रकाश नारायण को याद नहीं किया। तो खास तौर से उसको याद करते हुए ये आपके लिए ये कार्यक्रम किया गया था।
और इसी के साथ हम यहीं पर विदा लेंगे रेहान जी अपने श्रोताओं से,
तो इजाजत लेते हैं।
नमस्कार।
और अब कार्यक्रम में खेल समाचार भी सुन लेते हैं।
खेल की खबरों में सबसे पहले बात क्रिकेट की। 2016 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी का अधिकार लगातार तीसरी बार बांग्लादेश को सौंपने का फैसला लिया गया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 24 फरवरी से 6 मार्च तक होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन ने इस बात की जानकारी दी। 5 देशों के इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के अलावा एक एसोसिएट टीम भी हिस्सा लेगी। एशिया कप में टेस्ट खेलने वाले 4 देशों को सीधी एंट्री मिलेगी, जबकि एक एसोसिएट टीम का चयन क्वालिफाइंग टूर्नामेंट से होगा। बैठक में एशियाई देशों के बीच अंडर 19 लेवल पर और अधिक क्रिकेट खेलने पर भी चर्चा की गई। नवंबर में होने वाले टूर्नामेंट में अफगानिस्तान, ओमान, हांगकांग और यूएई की टीमें एक स्थान के लिए आपस में भिड़ेंगी। ये 5वां मौका है जब बांग्लादेश एशिया कप का आयोजन करेगा। इससे पहले 1988, 2000, 2012 और 2014 में भी बांग्लादेश इस टूर्नामेंट के मेजबान की भूमिका निभा चुका है। और अब बात बॉक्सिंग की। पेशेवर बॉक्सिंग में उतर चुके भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह आज 30 वर्ष के हो गए हैं। भारत को 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में कांस्य पदक दिलाने वाले विजेंदर अपनी दूसरी पेशेवर बाउट 7 नवंबर को डबलिन में लड़ेंगे। पहले ये बाउट 30 अक्टूबर को लंदन में होने वाली थी। विजेंदर को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने अपनी दूसरी बाउट पर बातचीत की।
मैं इस बाउट को लेकर काफी आश्वस्त हूं। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं और कड़ी मेहनत भी। मेरी बाउट 7 नवंबर को डबलिन में होगी। मैं आयरलैंड पहले भी जा चुका हूं। वहां के लोग अच्छे और बॉक्सिंग को पसंद करते हैं, ये अच्छा अनुभव होगा।
इसी महीने हुई अपनी पहली बाउट में विजेंदर ने इंग्लैंड की सोनी विटिंग को 3 राउंड तक चले मुकाबले में मात दी थी। 7 नवंबर को वो नॉटिंगम के डीन गिलन के खिलाफ उतरेंगे। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। चीन ने अपनी विवादग्रस्त एक संतान नीति को खत्म करने की घोषणा की है। करीब 30 साल पहले जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए ये नीति लागू की गई थी। भारत के सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि कश्मीर में मोस्ट वांटेड चरमपंथी कमांडर अबू कासिम की मुठभेड़ में मौत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को अफ्रीका के विकास का भागीदार बनकर खुशी है। देश में बढ़ती असहिष्णुता और नागरिक अधिकारों के दमन के खिलाफ भारत के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर पीएम भार्गव ने पद्म भूषण सम्मान वापस करने की घोषणा की है। सऊदी अरब के एक ब्लॉगर रैफ बदावी को सखरोव मानवाधिकार पुरस्कार से नवाजा गया है। यूरोपीय संसद हर साल इस पुरस्कार की घोषणा करती है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। अगली मुलाकात 9:30 बजे। कार्यक्रम का नाम आप जानते हैं घटनाचक्र। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।